एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चला। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तो अपने वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और मेरे संग पिता तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है भंडारीपन भाग एक। आज हम भंडारीपन के विषय में बातें करेंगे। किसी भी अन्य बातों से अधिक एक मसीह जीवन का अर्थ है समर्पण, स्वयं को त्याग देना और मसीह को स्वीकार करना। जैसे हम देखते हैं कि यीशु ने किस प्रकार समर्पित होकर हमारे लिए स्वयं का त्याग कर दिया और हम पुकार कर कह सकते हैं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। फिर जब हम सोचते हैं कि हमने पूरी प्रतिबद्धता पूर्ण समर्पण कर दिया है, तो कुछ ऐसा होता है जो दर्शाता है कि हमारी प्रतिबद्धता कितनी उथली है। जैसे जैसे हम परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए अपने जीवन के नए क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमारी प्रतिबद्धता बढ़ती जाती है। तब अत्यंत कोमलता से वह हमारे सामने अन्य क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षण करता है, जहां स्वयं को समर्पण करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार जीवन मसीही पुनः प्रतिबद्धताओं की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ता जाता है, जो हमारे स्वयं में, हमारी जीवन शैली में हम कैसे क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं, गहरा और गहरा होता जाता है। जब हम सब कुछ जो हम हैं या हमारे पास है परमेश्वर को दे देते हैं, जो वैसे भी उसी का है, पहला कुरिन्थियों 3:21-4:2 में यदि हम पढ़े तो इसे समझ में आएगा, वह उसे स्वीकार कर लेता है। परंतु फिर हमें उसका प्रभारी बना देता है। हमें सब कुछ जो हमारे पास है उसका भंडारी या रखवाला बना देता है। फिर हमारी सुविधा पूर्ण व स्वस्थ पूर्ण जीवन जीने की प्रवृत्ति इस एहसास द्वारा टूट जाती है कि हमारा प्रभु नग्न बंदी एवं एक अजनबी था, और उसका चिरस्थायी आदेश इसलिए जाओ एवं जाति जाति को सुनाओ, कलीसिया की गतिविधियों को साझा करना, सिखाना, उपदेश देना, बपतिस्मा देना अधिक मूल्यवान बनाता है। उसके कारण हम विश्वास योग्य भंडारी बनना चाहते हैं। तो आइए हम जाने भंडारीपन क्या है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 6:19-20 में। एक ऊंचे दाम पर हमें खरीदा गया, छुड़ाया गया है, हम परमेश्वर के हैं, परंतु ऐसा मात्र पुनः प्राप्त करने के लिए किया गया, क्योंकि उसने हमें बनाया है, हम आरंभ से ही उसके थे, क्योंकि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की। पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:1 में, शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, कहता है भजन संहिता 24:1। सृष्टि पर परमेश्वर ने मानवता के संग अपनी संपत्ति को बांटा और वह इस संसार का, उसके निवासियों का एवं उसकी सभी वस्तुओं का निरंतर सच्चा स्वामी है। भजन संहिता 24:1 के अनुसार क्रूस पर उसने उसे, जिसे मनुष्य ने पतन के समय शैतान को समर्पण कर दिया था, अपने लिए पुनः प्राप्त किया। 1 कुरिन्थियों 6:19-20 में हम पढ़ते हैं, अब उसने अपनी संपत्ति की देखरेख करने के लिए अपने लोगों को भंडारी के रूप में नियुक्त किया है। एक भंडारी वह व्यक्ति है जिसे दूसरे के घर बार या संपत्ति का प्रबंधन सौंपा गया है। भंडारीपन एक भंडारी का पद, कर्तव्य या सेवा है। एक मसीह के लिए भंडारीपन का अर्थ है परमेश्वर द्वारा मनुष्य को सौंपी गई हर चीज के लिए उसकी जिम्मेदारी और उसका उपयोग। जीवन, शारीरिक अस्तित्व, समय, प्रतिभाएं व योग्यताएं, भौतिक संपत्तियां, दूसरों की सेवा करने के अवसर एवं सत्य के विषय में उसका ज्ञान। मसीह परमेश्वर की संपत्ति के ऊपर प्रबंधकों के रूप में सेवा करते हैं एवं जीवन को एक दिव्य अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे वे विश्वास योग्य भंडारी बनना सीखें। फलस्वरूप भविष्य के जीवन में अनंत वस्तुओं के उच्च प्रबंधन के लिए योग्यता प्राप्त हो। इसके बड़े आयामों में फिर भंडारीपन जीवन का बुद्धिमान और निस्वार्थ उपयोग को शामिल करता है। परमेश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करने के क्या तरीके हैं? जीवन को चार बुनियादी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक परमेश्वर की ओर से वरदान, उसमें हमें एक शरीर, योग्यताएं, समय एवं भौतिक संपत्ति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त हमें अपने आसपास के संसार की देखभाल करनी चाहिए जिसके ऊपर हमें प्रभुत्व दिया गया था। शरीर का भंडारीपन के विषय हम क्या जानते हैं? परमेश्वर के लोग स्वयं के भंडारी हैं। हमें परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना है। लूका 10:27 कहता है, मसीहों को अपनी क्षमता और अवसरों के अनुसार अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को विकसित करने का सौभाग्य प्राप्त है। ऐसा करने से वे परमेश्वर का सम्मान करते हैं और अपने साथियों के लिए एक बड़ी आशीष साबित हो सकते हैं। आगे देखते हैं योग्यताओं का भंडारीपन। प्रत्येक व्यक्ति में विशेष योग्यता होती है। एक संगीत के क्षेत्र में प्रतिभाशाली हो सकता है, दूसरा हस्त चलित व्यवसाय में जैसे कि सिलाई या मोटर यंत्र विज्ञान। कुछ लोग आसानी से मित्र बना लेते हैं और दूसरों के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं, जबकि अन्य स्वाभाविक रूप से एकांत धंधों की ओर झुकाव रखते हैं। प्रत्येक प्रतिभा का उपयोग या तो जिसके पास है या उसके मूलदाता को गौरवान्वित करने के लिए किया जा सकता है। एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए कड़ी मेहनत से किसी प्रतिभा में निपुण हो सकता है या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए प्रत्येक वरदानों को हमें विकसित करना चाहिए ताकि इन वरदानों की संख्या में वृद्धि की जा सके। हम इसके बारे में पा सकते हैं मत्ती 25 अध्याय में। अच्छे भंडारी इन वरदानों का खुलकर उपयोग करते हैं ताकि उनके स्वामी के लिए बहुतायत से लाभ लाया जा सके। तीसरा देखते हैं समय का भंडारीपन। वफादार भंडारियों के रूप में हम समय का बुद्धिमानी से उपयोग करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, या समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हम पढ़ते हैं पौलुस की पत्री की कुलिसियों की पत्री में उसका 3:23-24 पद में बाइबल हमें यह सलाह देती है कि हम निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चले, अवसर को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे हैं। पढ़ते हैं इफिसियों 5:15-16 पद में, यीशु के समान हमें अपने पिता के व्यवसाय में होना अवश्य है। यीशु का यह कहा हुआ वचन लूका 2:49 में रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि समय परमेश्वर का वरदान है, प्रत्येक पल कीमती है। इसे अनंत जीवन के लिए, चरित्र का निर्माण करने के लिए दिया गया है। अपने समय का वफादार भंडारीपन का अर्थ है अपने प्रभु को जानने, अपने साथियों की सहायता करने और सुसमाचार को साझा करने के लिए इसका उपयोग करना। जब सृष्टि के समय परमेश्वर ने हमें समय दिया तो उसने सातवें दिन के सब्बत को अपने साथ सहभागिता के लिए पवित्र समय के रूप में सुरक्षित रखा, लेकिन छह दिन मानव परिवार को उपयोगी आजीविका में संलग्न होने के लिए दिए गए थे। तो हमें अपना समय जो परमेश्वर ने दिया है उसका अवसर उठा करके उसका अच्छा उपयोग करना है। आगे हम देखेंगे भौतिक संपत्तियों का भंडारीपन। परमेश्वर ने हमारे प्रथम माता पिता को पृथ्वी को वश में करने, पशु जगत पर शासन करने की एवं अदन की वाटिका की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी थी। यह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:28 में तथा 2:15 में। यह सब उनका न केवल आनंद लेने के लिए बल्कि प्रबंधन करने के लिए था। एक प्रतिबंध उन पर लगाया गया था, उन्हें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना था। इस वृक्ष ने निरंतर स्मरण दिलाया कि परमेश्वर पृथ्वी का स्वामी एवं संपूर्ण पृथ्वी पर उसका अंतिम अधिकार था। इस प्रतिबंध का सम्मान करते हुए प्रथम जोड़े ने उसके प्रति अपने विश्वास और वफादारी का प्रदर्शन किया। पतन के पश्चात परमेश्वर अब ज्ञान के वृक्ष के द्वारा परीक्षा नहीं ले सकता था, परंतु मानव जाति को अभी भी एक निरंतर अनुस्मारक की आवश्यकता थी कि परमेश्वर प्रत्येक अच्छे और उत्तम वरदान का स्रोत है, याकूब 1:17, और यह कि वही है जो हमें धन प्राप्त करने की शक्ति का प्रबंध करता है, व्यवस्था विवरण 8:18। हमें यह याद दिलाने के लिए कि वही प्रत्येक आशीर्वाद का स्रोत है, परमेश्वर ने दशमांश एवं भेंटों की प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली ने अंततः इजरायली मंदिर के याजकीय कार्य की सहायता करने के लिए आर्थिक साधन प्रदान किए। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों ने लेवीय नमूने को दुनिया भर में सुसमाचार फैलाने के लिए वित्त व्यवस्था की एक मजबूत बाइबल पद्धति के रूप में अपनाया है। परमेश्वर ने ठहराया है कि सुसमाचार को फैलाना उसके लोगों के परिश्रम व भेंटों पर निर्भर होना है। वह उन्हें दशमांश और भेंट देकर उसके साथ निस्वार्थ सहकर्मी बनने के लिए बुलाता है। तो दशमांश क्या है, आगे हम इसके बारे में सीखेंगे। जैसे हमारे समय का सातवां भाग सबद परमेश्वर का है, वैसे ही संपूर्ण भौतिक संपत्ति का जो हम एकत्रित करते हैं उसका दसवां भाग उसी का है, परमेश्वर का है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि दशमांश प्रभु के लिए पवित्र है, जो सभी वस्तुओं पर परमेश्वर के स्वामित्व का प्रतीक है। देखें लेविवस्ता 27:30-32, उसे उसका मानकर उसे लौटा देना है। अपनी सादगी में दशमांश प्रणाली सुंदर है। इसकी निष्पक्षता अमीरों और गरीबों पर इसके अनुपातिक दावे में प्रकट होती है। जिस अनुपात में परमेश्वर ने हमें अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए दिया है, उसी अनुपात में हमें एक दशमांश वापस करना है। जब परमेश्वर दशमांश की मांग करता है मलाकी 3:10 के अनुसार, तो वह कृतज्ञता या उदारता के लिए कोई याचना नहीं करता है। हालांकि कृतज्ञता परमेश्वर के प्रति हमारे सभी भावों का एक हिस्सा होना चाहिए। हम दशमांश इसलिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है। दशमांश प्रभु का है और वह अनुरोध करता है कि हम दशमांश उसे लौटा दें। आगे हम देखेंगे दशमांश के उदाहरण। संपूर्ण शास्त्र में दशमांश एक स्वीकृत प्रथा है। इब्राहिम ने परम प्रधान परमेश्वर के याजक मलकीसिदिक को सब वस्तुओं का दशमांश दिया। उत्पत्ति 14:20 में हम यह पढ़ते हैं। ऐसा करने से उसने मलकीसिदिक की दिव्य याजकता को स्वीकार किया एवं यह दर्शाया कि वह इस पवित्र व्यवस्था से भलीभांति परिचित था। दशमांश का यह अनौपचारिक संदर्भ इस बात को संकेत करता है कि यह उस प्रारंभिक प्राचीन समय में पहले से ही एक स्थापित प्रथा थी। स्पष्ट रूप से याकूब भी दशमांश की आवश्यकता को समझता था। एक निर्वासित और भगोड़े के रूप में उसने प्रभु से प्रतिज्ञा की, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उत्पत्ति 28 का 22 में लिखा है। और निर्गमन के पश्चात जब इज़राइल को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया था, परमेश्वर ने दशमांश की व्यवस्था को एक दिव्य संस्था के रूप में पुनः पुष्टि की जिस पर इज़राइल की समृद्धि निर्भर थी। लेवी व्यवस्था 27 का 30 से 32 और गिनती 18 का 24, 26 और 28 तथा व्यवस्था विवरण 12 का 6, 11 और 17 देखें। इस संस्था को निरस्त करने की बात तो दूर, नया नियम इसकी वैधता को मानता है। यीशु ने दशमांश को अनुमोदित किया और उसकी भावना का उल्लंघन करने वालों की निंदा की। मत्ती 23 का 23, जबकि मसीह के प्रायश्चित बलिदान के प्रतीक बलिदानी भेंटों को व्यवस्थित करने वाली विधि व्यवस्था उसकी मृत्यु पर समाप्त हो गई, परंतु दशमांश की व्यवस्था समाप्त नहीं हुई, क्योंकि इब्राहिम समस्त विश्वासियों का पिता है। वह मसीहों के लिए दशमांश देने के लिए आदर्श है। जैसे इब्राहिम ने परम प्रधान परमेश्वर के याजक मेलकिसिदक को दशमांश दिया, वैसे ही नए नियम के विश्वासी मेलकिसिदक के समान अपने महायाजक मसीह को दशमांश देते हैं। देखिए इब्रानियों 5 का 9 और 10 तथा 7 का 1 से 22। आगे हम देखते हैं दशमांश का उपयोग कैसा किया जाना चाहिए। दशमांश पवित्र है, यों इसका उपयोग केवल पवित्र उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए। प्रभु ने आदेश दिया, भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो या वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, और गाय बैल और भेड़ बकरियों का दशमांश यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। लेवी व्यवस्था 27 का 30 से 32। सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, उसने कहा कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यह परमेश्वर का वचन है। मलाकी 3 का 10 में यह लिखा गया है। इज़राइल में दशमांश का उपयोग विशेष रूप से लेवियों के लिए किया जाता था, जिन्हें कोई जनजातीय आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था। उन्हें अपना समय इज़राइलियों की आराधना को प्रोत्साहित करने में, मिलाप वाले तंबू की सेवा में व प्रभु की व्यवस्थाओं के विषय में लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत करना था। पढ़िए और देखिए गिनती 18 का 21 और 24 में। कृषारोपण के पश्चात जब लेवियों की दिव्य रूप से निर्देशित याजकता की भूमिका समाप्त हो गई, तब भी दशमांश का उपयोग परमेश्वर की कलीसिया की सेवा के लिए किया जाना था। पौलुस ने लेवीय सेवा एवं नव स्थापित सुसमाचार सेवकाय के बीच एक समानता को चित्रित करते हुए इसके अंतर्निहित सिद्धांत की व्याख्या की। उसने कहा, सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हम पढ़ते हैं पहला कुरंथियों 9 का 11 से 14 में। तब फिर कलीसिया के सदस्य स्वेच्छा से अपने दशमांश को भंडार में लाओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मलाकी 3 का 10 कहता है। दूसरे शब्दों में, ताकि परमेश्वर की कलीसिया में उसकी सेवकाई के लिए जीविका प्रदान करने और सुसमाचार के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन हो। तो परमेश्वर का यह आज्ञा है कि हम उसके दशमांश उसके भंडार में लाए। हम परमेश्वर के भंडारी हैं। परमेश्वर ने हमें जो कुछ आशीष दिए, जो कुछ वरदान दिए हैं शारीरिक या धन दौलत से, उसे हमें मानना है कि परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हर एक अच्छी वस्तु परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है और इस पर हमें विश्वस्तता दिखाना है। इसे हम परमेश्वर के महिमा के लिए और लोगों की सेवा के लिए उपयोग करें। जो दशमांश है उसे परमेश्वर को लौटाए और समय का दशमांश भी परमेश्वर के लिए दे कि हम उसके साथ अच्छा समय व्यतीत कर सके। जब हम ऐसा करते हैं हम परमेश्वर से बहुत आशीष पाएंगे। हम परमेश्वर के नज़दीक आते जाएंगे। परमेश्वर हमें मदद करे और अगुवाई करे कि हम उसके राह में चलने सके। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तूने हमें सृष्टि किया और इस पृथ्वी पर बहुत सारे चीज दिए, उसका हमें रखवाला बनाया कि हम विश्वस्तता से काम करें। पिता परमेश्वर हमें विश्वस्तता बनने के लिए मदद कर। हमें तेरा पवित्र आत्मा दे और हमें तेरा सच्चा भंडारी बना पिता, और हमें तेरे रास्ता में चला। मेरे हर एक श्रोताओं को भी बहुत आय से आशीष दे और तेरे वचनों के अनुसार चलने के लिए मदद कर पिता। हम सबों को तेरे राह में चला और हम सबों को तेरे राज्य में बचा ले। यीशु के नाम से मानता हूँ, सुना ग्रहण, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।